इसी समय सारी परमागम शास्त्र है जो अपना शुद्धात्मा को बताने वाला शास्त्र है, निमित्त रूप है, यानी आत्मा है उपादान। तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी अपना शुद्धात्मा का स्वरूप को बताने वाली है। तो इसका 13 नंबर का एक गाथा का विवेचन चलता है कि आत्मा को आज तक आत्मदर्शन यानी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, कैसे आत्मदर्शन हो जाए, ज्ञान का नाश कैसे हो, इसका एक प्रकरण 13 नंबर की गाथा है। उसका पहला पारा पूरा हो गया, अभी दूसरा पारा चलता चलेगा। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखे जाए तो, यानी अज्ञान से देखा जाए तो, सम्यक ज्ञान से न देखा जाए, अन्य अज्ञान से देखा जाए तो अज्ञान से देखा जाए तो क्या दिखता है वो पहले बताते। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंधक पर्याय के समीप जाकर जीव और पुद्गल दोनों स्वभाव से भिन्न भिन्न होने पर भी जिसका चेतन और जड़ का विभाग की दृष्टि नहीं है और दो के बीच में अत्यंत अभाव होने पर भी, अत्यंत भिन्नता होने पर भी अत्यंत अभिन्न लगता है, ऐसी अज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि बंध पर्याय के समीप याने भाव बंध की समीप जाकर देखे तो या तो जो भाव इंद्री है इसकी समीप जाकर देखे तो एक रूप से अनुभव करने पर जो भगवान आत्मा और पुद्गल भिन्न भिन्न होने पर भी उसके अपने आप दृष्टि का दोष से भेद ज्ञान का अभाव होने पर अज्ञान भाव से देखे तो देह और आत्मा एक लगता है और आत्मा और शुभाशुभ भाव एक लगते हैं, एक रूप से अनुभव करने पर यह नव तत्व भूतार्थ है सत्यार्थ है। गाथा है क्या कि अभूतार्थ नहीं से तू नव तत्व को जान। आज तक अज्ञानी ने किया कहा शू करू के अभूतार्थ नहीं से नव तत्व को जाना के जीव पुद्गल का करता है ने पुद्गल से जीव का परिणाम होता है। अरे कभी करता करो संबंध न हो तो कुछ नहीं, निमित्त निमित्त संबंध तो है ने। तो ये नव तत्व अभूतार्थ नहीं से अनंत काल से जाना यानी नव तत्व से भिन्न आत्मा है ऐसा नहीं जाना, नव तत्व और भगवान आत्मा स्वभाव से भिन्न भिन्न है, एकत्व हुआ नहीं था भूतकाल में, अभी भी एकत्व हुआ नहीं है, अने भावि काल में भी एकत्व होने वाला
नहीं है,
नहीं है, विभक्त है। तो भी अपनी दृष्टि का दोष से ये रागादि भाव और मैं एक हूं, ऐसी उसकी दृष्टि हो गई है। तो ऐसे देखो तो ये नव तत्व भूतार्थ है न सत्यार्थ है, यानी अज्ञान सत्यार्थ है। क्या कहा? ऐसे अज्ञान में भ्रांति हो गई तो ऐसे अज्ञान सत्यार्थ है। कि मैं राग का करने वाला हूं न दुख का भोगने वाला मैं हूं, बाह्य स्थूल दृष्टि से वो देखते हैं तो उस अपेक्षा से वो ठीक है, मगर यानी उसमें अज्ञान सिद्ध हो गया। क्या अज्ञान ठीक है? ऐसा नहीं, ये अज्ञान हुआ इस दृष्टि से तो अज्ञान की भी अस्थि है। क्या कहा? अज्ञान की जो अस्थि न हो तो अज्ञान टालने का उपदेश भी व्यर्थ हो। अनादि का अज्ञान क्यों है? कि जड़ चेतन भिन्न भिन्न होने पर भी, राग और चैतन्य परमात्मा भिन्न भिन्न होने पर भी उसको एक लगता है। वो बंध की समीप जाकर देखते हैं तो एक लगता है, इंद्रिय ज्ञान की दृष्टि से देखे तो एक लगता है, राग की दृष्टि से देखे तो एक लगता है उसको। ऐसा अज्ञान भी है, ऐसा अज्ञान भी पर्याय में अज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वभाव से आत्मा ज्ञायक ज्ञाता होने पर भी जो ज्ञाता दृष्टा को भूल जाता है न देहादि रागादि को मेरा मानता है तो अज्ञान प्रकट होता है। ऐसी उपलब्ध दृष्टि से देखो तो ऊपर ऊपर ऊपरी दृष्टि से देखो तो ये नव तत्व भूतार्थ दिखते हैं। और ये प्रमाण का विषय कहा, प्रमाण ज्ञान का विषय में आगम प्रमाण और अध्यात्म प्रमाण। प्रमाण ज्ञान में सब समाता है, शुद्ध पर्याय भी आते हैं अशुद्ध पर्याय भी आती है, मगर प्रमाण ज्ञान से बाहर जाना नहीं अने प्रमाण में अटकना नहीं। तो सारे सामान्य जगत तो प्रमाण से बाहर चले गया, प्रमाण में वर्तुल में भी आया नहीं। और थोड़ा जीव अल्प जीव पर के साथ मेरा कुछ संबंध नहीं है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय की वर्तुल में मेरा सब कार्य क्षेत्र पूरा होता है। तो प्रमाण में आ गया, मगर प्रमाण में से जो निश्चय नहीं निकालता नहीं है वो अज्ञानी रह जाता है। प्रमाण का पक्ष है, प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। सविकल प्रमाण सम्यक प्रमाण नहीं है। प्रमाण से मात्र पदार्थ की सिद्धि होती है, मगर प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। हाँ, प्रमाण में से जब प्रयोजन की सिद्धि होती है, अनेकांत में से सम्यक एकांत निकालता है तो सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत का ज्ञान जरूर होता है, तब साचा प्रमाण होता है। वो पदार्थ की सिद्धि सम्यक ज्ञान में होती है, मिथ्या ज्ञान में पदार्थ की सिद्धि नहीं है न प्रयोजन की सिद्धि भी ज्ञानी नहीं। प्रमाण ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, सविकल प्रमाण भी सच्चा प्रमाण नहीं है, वो सम्यक प्रमाण निर्विकल ध्यान में प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है, और प्रमाण ज्ञान का जन्म भी सम्यक एकांत पुरुष होता है। प्रमाण ज्ञान का विषय शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं का विषय प्रमाण ज्ञान नहीं है, शुद्ध नहीं का विषय तो एकला शुद्धात्मा है, उसमें दृष्टि देने से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ओ मैं ज्ञायक हूँ, इसे सम्यक एकांत पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय का जन्म होता है, तो सम्यक एकांत पूर्वक अनेकान का ज्ञान होता है। उत्पाद ध्रुवकृतम सत का पदार्थ का ज्ञान अनुभव में होता है, श्यादवाद का जन्म अनेकांत का जन्म अनुभूति के काल में होता है, शास्त्र का लक्ष्य से श्यादवाद का जन्म होता है। शास्त्र तो हमने बहुत पढ़ा, हम मेरी बात करते हैं, कोई पर की बात इधर मना है, प्रमुख साहब ने लिखा है बोर्ड के भी कथा की मना है, अपनी बात करते हैं। अनंत अनंत काल बीते हम द्रव्यलिंगी मुनि भी हुआ और नवमी ग्रेवी तक दुख भोगने के लिए गया, क्या कहा, स्वर्ग में गया मगर अनेकांत और श्यादवाद के नाम से, श्यादवाद अनेकांत तो प्रमाण ज्ञान का विषय है, नहीं का विषय कोई अलग अपूर्व है तो उसमें ही है, तो अनेकांत में ही सम्यक एकांत छुपी हुई है। अनेकांत को छोड़ो तो सम्यक एकांत नहीं निकलेगा, और अनेकांत का पक्ष में पढ़ो तो भी सम्यक एकांत। सूर्य रहता है ने, वो सूर्य पाषाण में रहता है, अंध पाषाण में सुवर्ण रहता, ऐसे जो नव तत्व है वो अंध पाषाण की जगह पर है। शांति से जरा सुनना, ये तो नव तत्व में छुपी ही आत्मज्योति, सुवर्ण पाषाण, सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण रहता है, अंध पाषाण में सुवर्ण रहता नहीं है। तो ये जो नव तत्व है वो सुवर्ण पाषाण है, अंध पाषाण नहीं है, उसमें अपनी गाय ज्योति विराजमान है, निकालना चाहिए। जगत का पदार्थ जीवो तो बाहि में घूमता है प्रमाण से बाहर, और विज्ञान लोग प्रमाण में अटक जाता है, हम भी अटक जाते हैं। और मैं मेरी बात करता हूं, मैं आपकी बात, मगर जब प्रमाण में आया तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो कोई और बात रह गई है। उत्पाद द्रुपतम सब तक आया, गुण पर्याय व द्रव्यम में स्माया, तत्वार सूत्र में पांच भाव जीव भाव है वहां तक भी आया, मगर उसमें आत्मा की अनुभूति होती नहीं। ये यही है सब उत्पाद ध्रुवतम सत, ये यही है ध्येय नहीं है। हाँ वो ध्येय में ध्येय है, ध्येय में ध्येय है, छुपा है। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं, सादा दृष्टांत, मैं सबको पूछता हूं मगर जवाब नहीं मांगता, पूछता तो हूं मगर जवाब नहीं मांगता, कि जैसे मौसम्बी है, मौसम्बी तो मैं पूछता हूं प्रश्न कि मौसम्बी है सो है ही है कि उपाधे है, किसको बोलना नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, समझे, विचार करना कि ये क्या प्रश्न आया, दो में से एक तो होने ना उपादेय होने का, दो में एक होना चाहिए, दोनों में से एक ही वो तो यही है। अच्छा जो है कहो तो रस चले जाएगा, और उपादेय कहो तो सब आ जाएगा छिलका पेट में, और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, समझे। दे। तो ये जो मुसंबी है यही है, ऐसे प्रमाण का विषय भूत पदार्थ जो है वो यही है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, परिणाम से सहित जो आत्मद्रव्य है वो यही है, और परिणाम से रहित आत्मा है वो उपाधि यही है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि अनादि काल से बंध का वसे शुद्धाशुद्ध पर्याय का पिंड उसको आत्मद्रव्य कहा है, मगर जीव तत्व तो कहा जीव द्रव्य में जीव तत्व तो छुपा है। छह द्रव्य है और तो परिणाम सहित का द्रव्य है, पर्याय सापेक्ष द्रव्य है। मगर जो जीव तत्व भी पर्याय सहित होने पर भी पर्याय से रहित आज तक देखा, आज तक देखा नहीं, और पर्याय से सहित हो आत्मा ऐसा ही हो अने अंतर्दृष्टि करे तो द्रव्य उपादेय नहीं लगे, क्योंकि पर्याय से सहित तेरे माना है तो पर्याय भी उपादेय मिथ्या तक ही पर्याय भी उपादेय आ जाएगी। मगर ये नव तत्व परिणाम अभूतार्थ होने से अनुभूति हो सकती, क्या कहा फिर से समय सार के चौथ गाथा में प्रश्न आया कि प्रभु आप कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करो, पर हम अनुभव कैसे कर सके, हमारे साथ आठ प्रकार का कर्म का संबंध है, अभी हमारी मनुष्य पर्याय है और ज्ञान दर्शन गुण भी दिखता है भेद, और हिनादक अवस्था भी है मौजूद पर्याय, और राग भी मौजूद है, इससे पांच भाव के सद्भाव में यानी पर्याय का सद्भाव में पर्याय से रहित पर्याय के सहित होने है तो आप कहते हैं कि अनुभूति हो सकती है, तो कैसे अनुभूति हो सकती है, सुन देख के सब अवतार होने से अनुभूति हो सकती है। जब तेरा ज्ञान अंतर्मुख होगा तब पांच भाव बाहर रह जाएगा, अनुभव के विषय बनने वाला अनुभव के विषय तो एक शुद्धात्मा बनेगा, पांच भाव होने पर भी अनुभूति हो सकती है, क्योंकि अभूतार्थ यानी स्वभाव में उसको अलोकमा भेजने की बात नहीं है, पर्याय को अलोकमा मत भेज, पर्याय की अस्तित्व पर्याय में रख, मगर पर्याय मेरा मां नहीं है, मेरे पर्याय से मैं रहित हूं। आ रहित सहित की रमत है, रहित सहित की आहा, जिसको रहित का सद्धान ज्ञान होता है वही समय काल भेद नहीं है, उसको पर्याय से मैं सहित हूं ऐसा ध्येय का ज्ञान हो जाता है। ध्येय का ध्यान ने ध्येय का ज्ञान, ध्येय तो पर्याय से रहित है अने ध्येय तो पर्याय से रहित है, समय एक है, समय एक है तो कोई बाधा आती नहीं है। इसे केवल ही भगवान एक समय में उत्पाद ध्रुव को जानता है, ऐसे शुद्ध ज्ञानी एक समय में उत्पाद वे ध्रुव को जानता है कि तीन को क्यों जाने कि तीन नहीं है एक है, तीन का है ये ही एक है, ये एक है, और जो ये है उत्पाद वे ध्रुवतम सब वो ध्येय नहीं है। ध्येय तो ध्रुव है, ध्येय तो ध्रुव है, और ध्यान करने वाला उत्पाद पर्याय है, और जब ध्येय और ध्यान की एकता होती है तो ज्ञाता हो जाता है, ज्ञाता का नाम स्वग्नि है, ज्ञाता का नाम स्वग्नि है। ऐसे उपलब्ध दृष्टि से देखो तो यानी पर से भिन्न प्रमाण में आकर देखो तो ये सब नव तत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, मगर उसमें साध्य की सिद्धि होती नहीं है। अभी साध्य की सिद्धि अनंत काल से नहीं किया, प्रमाण में अटका। विद्वान लोग प्रमाण में अटक गया। प्रमाण में से कार्तिक अनुपेक्षा नाम का शास्त्र है, भावलिंगी संत का लिखा हुआ, उसमें फरमाते हैं कि प्रमाण में से जो कोई निश्चय नहीं निकालता है वो जिन वचन में कुशल है, जिन वचन में प्रमाण में से मुसम्मी में से कोई रस निकाले तो कुशल है, मुसम्मी में से रस निकालना नहीं जाने ऐसा ऐसा कर तो बुद्ध है। क्या कहा?
पशु है,
ऐसा ऐसा खाता है, क्या खाता है उसमें सरस निकाल ले तो चिकाल छिलका बार। ऐसे प्रमाण ज्ञान का विषय में शुदा शुद्ध पर्याय का पिंड वो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, जीव तत्व नहीं है। तो इसमें से प्रमाण में से जो निश्चय नहीं निकालता है वो जिन वचन में कुशल है और अनुभूति के काल में उसको पदार्थ की सही सिद्धि होती है, पदार्थ का खंडन नहीं होता है, सिद्धांत का खंडन नहीं होता है, सिद्धांत अनुभूति के काल में सिद्ध होता है। खंडन तो मिथ्यात्व का होता है, पदार्थ का खंडन होता नहीं है। कौन खंडन करे उत्पाद द्रुतम सत का? खंडन करने वाला कोई हा, मिथ्यात्व का खंडन करने की बात इधर चलती है,
बराबर
वो तो करना ही चाहिए,
बराबर
इसके लिए तो शिविर है। शिविर का प्रयोजन क्या है? आत्मा का अनुभव हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, तो अज्ञान जन्य जो चार गति का दुख मिट जाए और अल्प काल में मुक्ति हो जाए। असंख्य समय लगता है, अनंत समय लगता, अनुभव के काल के बाद अनंत समय नहीं लगता है, असंख्य समय में मुक्ति हो जाती है।
बहुत बढ़िया।
और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप अभी प्रमाण में से नहीं निकालने की बात आचार्य भगवान प्रमाण सिद्ध किया, प्रमाण ज्ञान सिद्ध किया। प्रमाण ज्ञान का विषय नव तत्व है, यानी नव तत्व परिणमक जीव है, परिणामी जीव है। परिणामी जीव प्रमाण का विषय है, अपरिणामी जीव शुद्धि का विषय है। परिणामी में से परिणामी द्रव्य में से अपरिणामी निकालो, परिणामी द्रव्य पर्याय सापेक्ष द्रव्य, पर्याय सही द्रव्य, परिणमता भी है, परिणमता है। तो एक उसमें से आचार्य भगवान प्रमाण ज्ञान में लाकर, प्रमाण ज्ञान में लाकर किया ने पर से भिन्न पड़ गया। प्रमाण ज्ञान पर से भिन्न पाड़ता है अने शुद्ध नहीं पर्याय से भिन्न पाड़कर अनुभूति करा देता है। प्रमाण ज्ञान पर से भिन्न पाड़कर अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लाता है और शुद्ध नहीं प्रमाद अप्रमाद से रहित बताकर शुद्धात्मा का दर्शन कराता है। ये बात अभी आचार्य भगवान फरमाते, प्रमाण स्थाप किया, प्रमाण की स्थापना मुसम्मी लेना, पत्थर नहीं लेना, मुसम्मी चाहिए जिसमें रस है। ऐसे नौ तत्व ये मुसम्मी का स्थान पर है, मगर चैतन्य रस उसमें से जुदा निकालना
चलती।
और एक जीव द्रव्य के स्वभाव की समीप जाकर, उद्गल के समीप जाकर देखता था तो आत्मा का दर्शन नहीं होता था, राग की राग का लक्ष्य से आत्मा का दर्शन नहीं होता था, शास्त्र ज्ञान का लक्ष्य करने से आत्म ज्ञान नहीं होता था। अभी उसका लक्ष्य छोड़ दे और एक जीव द्रव्य के उसमें नौ था, उसमें नौ था, नौ व्यवहार नहीं का विषय है, एक है ये निश्चय नहीं का विषय है। एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर यानी नव तत्व का मैं करता हूं अवधि छोड़ दे और नव तत्व ज्ञान का यही है वो बुद्धिपण छोड़ दे उसका लक्ष्य सर्वथा छोड़ दे। नव तत्व छोड़ना नहीं है, नव तत्व का लक्ष्य छूट जाता है जब आत्मा आत्मा का लक्ष्य पर आता है, अंदर में जाता है उपयोग, जो बहिर्मुख उपयोग था वो उपयोग जात्यांतर होता है। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट होता है तो ऐसे स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये नव तत्व अवतार असत्यार्थ है। अभेद में भेदिकता, भेद भेद में होने पर भी, नव तत्व का भेद भेद में होने पर भी भेद को भेद का स्थान में रखो, अभेद में नहीं मिलाओ। अभेद में मिलाता है उसको आत्मदर्शन होता
है।
सही है, अच्छा। ऐसा है, जब ये ज्ञान गोष्ठी का आयोजन होता है तो इसमें कुछ जीव का हित होने वाला होगा तो ये बनाव बनता है। बनाव बनता किसी को थोड़ा समझ में आवे, ज्यादा समझ में आवे, कोई अभिमुख हो जावे, सम्यक सन्मुख हो जाता है, अरे कोई को सम्यक दर्शन भी पिंडाल में हो सकता है। मंदिर में जाने की जरूरत, ये मंदिर है, भगवान अंदर विराजमान है, दे देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। लक्ष्य फेर दे, लक्ष्य फेर दे, ऐसा ऐसा करता है छोड़ दे, ऐसा कर, बस इतनी बार है, देर तो इतनी है, परिणाम पर्दन है। नव तत्व पर्दन का लक्ष्य छोड़ दे, पर्दन का छोड़ने की बात नहीं है, पदार्थ का त्याग की बात नहीं है, उसका लक्ष्य वहां से हटा दे। जानने तो आता है तेरे को, ओ ये बदल दे, ये बदल दे, ये बदल दे, ये बदल दे, इतनी देर है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि जीव द्रव्य की स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर वो नव तत्व अवतार्थ सत्यार्थ है। तो जो नव तत्व सत्यार्थ अवतार्थ है उसका मर्म समझे नहीं, अने नव तत्व पुरार्थ है। अज्ञानी जीव व्यवहार का पक्ष वाला ऐसे आक्षेप करता है ज्ञानी पर, उसको समझ में आता नहीं। अभूतार्थ का अर्थ मेरा अभेद स्वभाव में भेद नहीं है, रस में छिलका नहीं है, रस में छिलका अभूतार्थ है, अभूतार्थ है वो है मगर इसमें रस में नहीं है। ऐसे चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा में रागादि परिणाम, अभूतार्थ का अर्थ स्वभाव में त्रिकाल भाव है, स्वभाव में नव तत्व का त्रिकाल भाव, मोक्ष की पर्याय भी मुक्त स्वभाव में नहीं है। मुक्त स्वभाव में तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख है, जिसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है। औपचारिक लक्षण वाली पर्याय आत्मा में नहीं है, तो उदय लक्षण वाली पर्याय तो आत्मा में, मत देख मेरे आत्मा में राग है मत देख। एक दफे भगवान आत्मा को स्वभाव की समीप जाकर देख तो आत्मा का दर्शन होगा, उस टाइम राग मेरे में है नहीं दिखेगा। अरे सम्यक दर्शन मेरे में ऐसा नहीं दिखेगा। कश्मीरी लाल जी अनंत गुण का पिंड भगवान सामान्य सामान्य का दर्शन होता है, तब विशेष विशेष का अज्ञात हो जा। ऐसे इष्टोपदेश में एक 44वीं गाथा है, पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है, उसमें अनुभव के विधि बताते फरमाते हैं कि जो जीव विशेष का अज्ञात होता है, समझे, यानी विशेष जो पर्याय ज्ञान का गेय नहीं बनती है, एक इला सामान्य ज्ञान का गेय बनता है तब अनुभव होता है। तो निर्विकल ज्ञान होता है वो बंधता नहीं है न छूटता है, ऐसा श्लोक है। निर्विकल ज्ञान आता है तो बंधता नहीं न छूटता है। तो निर्विकल ज्ञान कब आवे के विशेष का अज्ञात हो तब, यानी पर्याय का लक्ष छूटे तब। जैसे 114 गाथा में आया के पर्याय को जानने सर्वथा बंद कर दे, साफ कथनचित बंद करूं तो क्या, यानी कथनचित जानूं तो क्या शादवाद है। अरे अनुभव के बाद शादवाद का जन्म होता है। अनुभव कैसे हुए वो बात अलग है, अनुभव के बाद क्या है वो बात अलग है। अनुभव तो हुआ नहीं और ज्ञानी का चाला करता है। चाला क्या करता है, नकल करती है, वो भी व्यवहार नहीं को जानता है। 12वीं गाथा में चोखा स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि व्यवहार नहीं जाने ला रोजनान हो। तो मैं को पर्याय को जानता हूं, उसमें क्या तकलीफ, ज्ञानी भी जाने मैं भी जानो जहां तक तू, वो पर्याय को जानता है तहां तक मिथ्या दृष्टि है, करता है तहां तक तो मिथ्या दृष्टि है। धनाला जी साहब ये ज्ञान गोष्ठी है ना, अज्ञान गोष्ठी नहीं है। पर्याय का मैं करता हूं तो अज्ञान गोष्ठी है, और पर्याय को मैं जानता हूं अभी अज्ञान गोष्ठी है। छोड़ दे लक्ष्य, छोड़ दे, एक थोड़े देर के लिए तो छोड़ दे, बाद में आत्मा का अनुभव करने के बाद वो जो पर्याय ज्ञान का गेय होती है वो हे रूप नहीं होगा, अभी तेरे को उपाधेय रूप नहीं होता है। अभी तुम पर्याय को जानने की बात करता है ना, तो वो उपाधेय रूप गेय हो गया। और अनुभव के बाद पर्याय को ज्ञानी जानता है वो यही है, रूप यही है, उपाधेय रूप है यही नहीं है उसका। उपाधेय रूप यही तो एक परमात्मा आ गया दृष्टि में, तो आ गया बस। पर्याय जानने में आता है, पर्याय जानने पर पर्याय दृष्टि नहीं होती है। पर्याय को अनुभव के बाद, अनुभव के पहले पर्याय को जानने से पर्याय दृष्टि होती है, अनुभव के बाद पर्याय को जानने से पर्याय दृष्टि होती नहीं है। उसको जानना व्यवहार है, वो भी काम चलाओ थोड़ी देर के लिए। निर्विकल ध्यान में टिक नहीं सकता है मेरा उपयोग, तो ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है। मगर ज्ञान का ज्ञेय यही है तो फिर से निर्विकल ज्ञान आता नहीं है। अने जो वजन आ जाता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है।
परम रह
जानना नहीं है, जानने में आता है ठीक है, मगर ये मेरा जानने का विषय है ऐसा ज्ञानी मानता। जिसका लक्ष्य से आनंद की वृद्धि न हो वो जानने का विषय, जिसका लक्ष्य से आनंद की प्राप्ति तो हुई मगर जिसका बार बार जानने से आनंद की वृद्धि होती है वही एक ही गेय है, दूसरा गेय है नहीं। ऐसी बात है,
आनंद का समुंदर उतरता है।
पिंड भागशाली है, स्वयं उछलती है। जीव द्रव्य का स्वभाव की समीप जाकर देख, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे। मैं पर्याय का करता हूं वो लक्ष्य छोड़ दे, अने पर्याय ज्ञान का ज्ञेय है वो लक्ष्य छोड़ दे। क्योंकि भेद का लक्ष्य से अभेद की अनुभूति होती, भेद का लक्ष्य से रागी प्राणी को अवश्य राग होता है। राग को छोड़ाने के लिए भेद का लक्ष्य छोड़ाना है। राग की उत्पत्ति का जब व्यय होता है तब वितराग भाव प्रकट हो जाता है। तो पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे और स्वभाव के समीप आकर देख, स्वभाव के समीप आकर
खंड हो गई।
क्या कहा, प्रभु तू सुन तो सही, तेरी प्रभुता कैसी है। प्रभु तू सुन, सर्वज्ञ भगवान सबको विभु प्रभु भगवान के बुलाता है। कोई पावर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, किसी को कर्म का बंध हुआ ही नहीं, और कर्म का उदय किसी को आता ही नहीं, और कर्म का लस कोई करता ही नहीं है, और उसकी दशा में मिथ्या तो होता नहीं है। ऐसा ज्ञान तो मैं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा का ध्यान कर तो परमात्मा बन जाएगा। स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार दस, जो पहले भूतार्थ कहा उसको अभूतार्थ कहा। पहले एकत्व बुद्धि था तो ऐसे अज्ञान की परिस्थिति बनती थी, अभी जब स्वभाव के समीप जाकर देखा तो अज्ञान चल गया, तो ये उसमें नव तत्व में आत्मबुद्धि छुप जाती है। आत्मबुद्धि रहती आत्मा में, आत्मबुद्धि आ गई तो नव तत्व ज्ञान का ज्ञेय बनता है, कर्ता का कर्म बनता नहीं है, क्योंकि अकर्ता को कर्म नहीं हो न ज्ञाता भी कर्म नहीं है, ज्ञाता को कर्म नहीं होता है, ज्ञाता का ज्ञेय होता है नव तत्व। वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है, काउंस क्या, जीव का जो अभेद सामान्य स्वभाव है उसमें नव तत्व का भेद
नहीं
है। अनेकता एक में अनेक नहीं है, एक में अनेक
नहीं है,
नहीं है। एक ज्ञायक भाव हूं मैं तो, अप्रमद दशा भी मेरे में
नहीं
है, शुद्ध उपयोग की दशा मेरे में नहीं है, नहीं है। तेरे में शुद्ध उपयोग तेरे में नहीं है, क्या बात है। निश्चय रत्न त्रय का परिणाम मेरे में नहीं है, विवाह रत्न त्रय का परिणाम की बात तो दूर हो, तो जाति भेद है, इसकी जाति एक है तो परिणाम मेरे में
नहीं है।
दृष्टि का विषय दृष्टि में आए बिना विकल्प टूटेगा नहीं, निर्विकल्प ध्यान आएगा, निर्विकल्प ध्यान के बिना सम्यक दर्शन का जन्म होता। वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है, भले हो नव तत्व, नव तत्व में भले हो मगर मेरे में
नहीं
हो। मुसम्मी का रस में छिलका
नहीं है,
छिलका छिलका में हो, छिलका और रस एक क्षेत्र होने पर भी जुदा जुदा रहता है, एक क्षेत्र रहने पर भी जुदा जुदा रहता है। इसे आकाश के एक क्षेत्र में, आत्मा का एक क्षेत्र में नहीं, आकाश का एक क्षेत्र में नव तत्व भी है और जीव तत्व भी है, मगर जुदा जुदा रहता है, क्योंकि आकाश का क्षेत्र में तो सब रहता है, मगर मेरा क्षेत्र में नव तत्व आकाश ना क्षेत्र में है, मैं भी हूँ नव तत्व भी है, मगर मेरा क्षेत्र में वो नव तत्व स्व क्षेत्र में पर क्षेत्र की नास्ती है। जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है, हमको दिखाई नहीं दिया, अभेद की दृष्टि दिया तो भेद दिखाई देता, ऐसा एक 37 नंबर का श्लोक है
जी।
आधार से श्रद्धा दृढ़वान होती, डटती है, डटता भी शास्त्र का आधार। साढ़तीस नंबर का श्लोक है 37, ये आ गया। जो वर्णादिक अथवा राग मोह आदिक भाव कहे वे सभी इस पुरुष यानी आत्मा से भिन्न है, भिन्न होता है ऐसा नहीं लिखा, एक एक शब्द की कीमत है, सदाई भिन्न है, वो मानता है सदाई अभिन्न है, दुख मेरे से अभिन्न मानता है भिन्न मानता है अभिन्न, इसका नाम अज्ञान है। जो अभिन्न हो गया तो दुख का नाश हो ही नहीं, कोई सिद्ध पर्याय प्रकट न हो। इस पुरुष से भिन्न है इसलिए अंतरदृष्टि से देखने वाले को बहिर्दृष्टि नहीं, बहिर्दृष्टि से आत्मा का दर्शन नहीं होता है। नव तत्व दिखाएगा बहिर्दृष्टि से, तो नव तत्व आत्मा रूप दिखाएगा। नव तत्व रूपे नहीं दिखने में आएगा बहिर्दृष्टि से, मगर अंतरदृष्टि से देखने वाले को यह सब दिखाई नहीं देते। तो स्वपर प्रकाशक का नाश होगा। क्या कहा? आत्मा भी दिखाई देवे अने वर्णादि रागादि भाव भी दिखाई देवे तो स्वपर प्रकाशक की सिद्धि होते। स्वपर प्रकाशक प्रमाण में आत्मा का अनुभव नहीं होता है, केवल स्वप्रकाश के द्वारा ही आत्मा का अनुभव होता है। अभेद में भेद दिखता नहीं है, पर्याय की चक्षु श्रोता बंद हो जाती है और द्रव्यात्मक चक्षु खुलकर आत्मा का दर्शन होता है। और स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक है तो व्यवहार है, स्वप्रकाशक छोड़ता है और स्वप्रकाशक अज्ञान में जाता है। ऐसा अज्ञानी जीव निगोद में भी स्वपर प्रकाशक है और प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान की दो व्याख्या है, एक द्रव्य का प्रमाण और एक ज्ञान की पर्याय का प्रमाण। विषय आया है, अच्छा सुनना बराबर, ये पहला श्लोक पूरा कर लो। देखने वाले को यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र एक, मात्र सिर्फ ओनली एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है। सर्वोपरि है, भगवान आत्मा
सर्वोपरि है।
नव तत्व में सर्वोपरि तत्व परमात भगवान आत्मा है, सर्वोपरि तत्व दिखाई देता है, तत्व ही सर्वोपरि तत्व ही। समय के काम कर दिया।
सर्वोपरि तो मोक्ष होता है,
नहीं सर्वोपरि मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो एक समय की पर्याय नाशवान है और जीव का लक्षण इसमें नहीं है। जो जीव तत्व का लक्षण परम पारिणामिक भाव है वो उसमें नहीं है। मोक्ष पर्याय कर्म का अभाव की अपेक्षा रखती है, इसलिए सापेक्ष है। अरे भगवान आत्मा तो निरपेक्ष है, इसलिए मोक्ष की साथ मिलान करो तो भी, मोक्ष की पर्याय की केवल ज्ञान की साथ मिलान करो तो भी भगवान आत्मा तो अनादि अनंत सर्वोपरि रहता है। केवल ज्ञान के काल में भी केवल ज्ञान सर्वोपरि नहीं होता है, केवल ही उसको सर्व नहीं जानता है सर्वोपरि, केवल ही अपना आत्मा को सर्वोपरि जानता है तो केवल ज्ञान टिकता है अने रहता है साध्य अनंत का।
मोक्ष जिसके सहारे रहता है वो सर्वोपरि।
हाँ, मोक्ष किसके सहारे होता है वो सर्वोपरि है।
प्रमाण के दो प्रकार
सिद्ध रहते हैं
आप।
अभी यह हुआ है, ये श्लोक पूरा हो जाए ना, मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है, केवल एक, केवल ओनली मात्र फक्त एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है। परिणाम में अभेद आत्मा दिखाई देता है तो परिणाम भी कथनचित अभेद होकर आत्मा बन जाता है।
बराबर सही है।
अभी प्रमाण का दो विषय या पांच सात मिनट बाकी है, सात मिनट बाकी है, हो जाएगा दस मिनट बाकी, ठीक सवा दस तक बराबर, ठीक सवा दस तो बराबर है,
साढ़े दस
मेरी घड़ियाल में दस छह सात मिनट हो गई। अच्छा प्रमाण का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो विद्वान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, समझे, सबके लिए अच्छी है। सबको कि प्रमाण का दो भाव है, एक द्रव्य का प्रमाण यानी एक ज्ञान के पर्याय का प्रमाण। द्रव्य का प्रमाण में क्या आता है कि द्रव्य पर्याय वस्तु वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। द्रव्य भी आत्मा ने पर्याय भी जो आत्मा द्रव्य का है वही आत्मा पर्याय का है, द्रव्य पर्याय वस्तु सारी
बराबर
ये प्रमाण ज्ञान का विषय है, समझे? एक बात और, ज्ञान की पर्याय का प्रमाण के उसमें स्व पर दिखे न पर भी दिखे, स्व पर प्रकाशक, स्व भी जानने में आवे न पर भी जानने में आवे। ज्ञान की पर्याय का प्रमाण, ज्ञान की पर्याय का प्रमाण यानी प्रमाण ज्ञान, यानी प्रमाण ज्ञान, ज्ञान की पर्याय उपपद दो को जाने, द्रव्यपर्याय द्रव्यपर्याय दो को जाने ने, तो उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। और जो द्रव्य का प्रमाण है और द्रव्य पर्याय सारी वस्तु को जाने, उसका नाम प्रमाण ज्ञान ही द्रव्य का प्रमाण। अभी द्रव्य का प्रमाण में से द्रव्य दृष्टि करना हो तो पर्याय का निषेध करके पर्याय मेरे में नहीं है तो अंतर्दृष्टि हो जाएगी, तो आत्मा का अनुभव उसमें होता है। द्रव्य का प्रमाण में से निश्चय निकालना कि मैं सामान्य हूं विशेष, प्रमाण ज्ञान में विधि निषेध नहीं है। द्रव्य भी है न पर्याय भी है, नित्य भी हूं न अनित्य भी हूं, उसमें भी आता है, उसमें प्रमाण में भी आता है, नहीं में ही आता है, नहीं में
ही आता
कि मैं सामान्य ही हूं अने विशेष, उसमें विधि निषेध नहीं में आती है। और बाद में विधि निषेध का विकल्प भी छूट जाता है। आज प्रकरण आया था 144 का था पर कि मैं सामान्य हूं ऐसा विकल्प, सामान्य में विशेष नहीं है ऐसा निषेध का विकल्प, दो ही विकल्प है। ये दो विकल्प करता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान है। वो विकल्प छूटता है, पक्षातिक्रांत होता है, तो जैसा है ऐसा जानता है। तो प्रमाण ज्ञान का विषय में द्रव्य पर्याय दो है, उसमें से द्रव्य उपादेय है न पर्याय है, ऐसा निकालना उसका नाम निश्चय नहीं है। अभी एक बात बाकी रही कि ज्ञान की पर्याय में स्व पर दो जानने में आता है, समझ गया? तो दो जानने में आता है, उसमें अनुभव नहीं होता है। अभी जाननहार जानने में आता है पर जानने में वो उसमें से निश्चय नहीं निकाल। ज्ञान की पर्याय का प्रमाण में निश्चय व्यवहार दो शामिल है, ज्ञान की पर्याय का प्रमाण में निश्चय व्यवहार में शामिल हो गया है। तराटी जी, ज्ञान की प्रमाण में दो शामिल हो गया, द्रव्य भी है न पर्याय भी जानने में आती है। अभी पर्याय का जानना बंद कर दे और द्रव्य सामान्य को जान ले तो प्रमाण में से एक इला स्वप्रकाशक निश्चय नहीं शुद्ध नहीं निकलता है, उसको अनुभव होता है। तो सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत भी हो जाता है। द्रव्य को जानते जानते पर्याय भी जानने में आती है और द्रव्य का निश्चय में जो आया वो मैं ये हूं अने आनंद की पर्याय प्रकट हो गई, वो भी मैं हूं। तो समय के कान पूर्वक अनेकांत ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता है। सच्चे प्रमाण का जन्म नई पूर्वक ही प्रमाण होता है। कई जीव ऐसा पकड़ता है कि प्रमाण पूर्वक नहीं है, मगर प्रमाण पूर्वक नहीं है वो बात सही है, मगर किसको? जिसको अनुभव हो गया, सच्चा प्रमाण हो गया, वो प्रमाण पूर्वक नहीं की बात करे तो सही है। तेरे को तो अनुभव हुआ नहीं और प्रमाण का ठेका लगा दिया कि प्रमाण पूर्वक नहीं है, कि नई पूर्वक प्रमाण का जन्म होता है। अज्ञानी को प्रमाण पूर्वक नहीं होता है कि नई पूर्वक प्रमाण होता है? कि नई पूर्वक का प्रमाण होता है। बाद में प्रमाण पूर्वक नई का प्रयोग करे तो सम्यक है, ऐसे अनुभव के पहले प्रमाण 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 का पक्ष में आ जावे। प्रमाण जिसका लक्षण है वो भी व्यवहार है, क्योंकि वो पूज्य नहीं है, प्रमाण में से निश्चय नहीं सच्ची है। जो पक्षातिक्रांत पहले निश्चय नहीं आती है, पक्षातिक्रांत पूर्वे अनुभव के पूर्वे एक निश्चय नहीं प्रकट होती है। निश्चय ही नहीं भी कोई अपूर्व है। अनंत काल से इसे सविकल्प निश्चय नहीं भी प्रकट नहीं हुई है। यथार्थ निर्णय होता है उस टाइम एक अपूर्व और निश्चय नहीं प्रकट होती है। सविकल्प है मिथ्या दृष्टि, भले मिथ्या दृष्टि है तो भी मिथ्या तो अभी जाने वाला है, ऐसा मिथ्या दृष्टि है। ये कोई ऐसा निर्णय आता है, 144वीं गाथा में आएगा, प्रथम निर्णय कर बाद में अनुभव होता है, ऐसा आएगा सब गाथा में। तो पहले निर्णय कर, सुना बहुत बड़ा बहुत, मगर निर्णय करने वाला कोई बिरला होता है। निर्णय कर ले अभी, मगर निर्णय को अगर नहीं करना, जो निर्णय को अगर करता है उसको निर्णय ही नहीं है। ऐसा जैसा आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ऐसा परोक्ष अनुभूति में सविकल्प दशा में मानसिक ज्ञान में ऐसा ही आत्मा ख्याल में आ जाता है और अनुभव के बाद मिलान करता है तो मिल जाता है। अरे वो बात आत्मा की तो मेरे पहले ही आ गई, ऐसा अनुभव हुआ। फर्क इतना है कि उसमें आनंद आता है, उसमें आनंद नहीं था, उसमें अपूर्व हर्ष था, ऊपर अपूर्व प्रसन्नता। क्या वो प्रसन्नता थी दो भी अतीन्द्रिय आनंद, मगर उसको मालूम हो जाता है अपूर्व निर्णय वाला को। किसी को तो अंतर्मूर्त में अनुभव होता है, अरे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में अनुभव होता है, ऐसा कौन करा जाता है। वो आत्मा जानता है, वो आत्मा जिसको अपूर्ण निर्णय आया बाद में अनुभव होता है वही आत्मा जानता है। इसके बारे में एक प्रश्न उठा कि इससे अपूर्ण निर्णय आता है तो कोई आपका विवेचन करो कि क्या है, तो पंचाध्याय कर्ता ने कहा कि अपूर्ण निर्णय के बाद वचन अगोचर है, निर्विकल्प वत है, निर्विकल्प नहीं विकल्प वत है, केवल अनुभव है, वो वचन से कहा नहीं जाता है। सम्यक दर्शन तो कहा जाता है, मगर सम्यक